वह मन अजला मुमीमा मना मसाजिद अल्लाह, और इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों से रोके। ऐसा भी कोई हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिद, जी हाँ, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को रोक दिया था काबतुल्ला आने से। अब वो पता है, जब मदीना हिजरत करके चले गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कितने 6 साल तक, तो छठे साल में हुदैबिया का मुआहदा हुआ था, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए जा रहे थे जब रोक दिया गया था। उससे भी पहले भी कभी भी मुसलमानों को इजाज़त नहीं थी काबतुल्ला आने की, हालांकि वो ऐसी जगह थी जहाँ पे सारे बुत परस्त आते, कोई अपने बाप के कातिल को भी देख लेता था तो उसको कोई पकड़ता नहीं था, इतनी अमन की जगह थी, सबके लिए ओपन थी, लेकिन मुसलमानों के लिए बंद कर दी गई थी। इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? और इसके बाद जो भी ऐसा करे, अल्लाह की मस्जिद से रोकना बहुत बड़ा गुनाह है। जुल्म सिर्फ ये नहीं है कि कोई यतीम का माल खा ले, वो भी जुल्म है, कोई करप्शन करता है, वो भी जुल्म है, शिर्क भी जुल्म है, लेकिन मस्जिद से मना करना बहुत बड़ा जुल्म है। ठीक है, मस्जिद अल्लाह का घर है और ये सबके लिए खुली होनी चाहिए। और आई यूज काराफी हस मुहू, और ये इस तरह मना करे कि जिक्र किया जाए इनमें नाम उसका, वसाफी खराबी है, और इसकी वीरानी की कोशिश करे, इस चीज से मना करे कि वहां पे अल्लाह का जिक्र कोई करे, यानी इबादत करे अल्लाह ताला की, इससे मना करे लोगों को, इससे रोक दे लोगों को, और मस्जिद की वीरानी की कोशिश में लग जाए। एक काम है मना करने का और एक काम है कोशिश करने का। मना किससे? कि वहां पे अल्लाह का जिक्र ना हो। अब ये कैसे होगा, और कोशिश किस चीज की? कि वीरान हो जाए। दो तरह से है, एक हिस्सी और एक मानवी। हिस्सी का मतलब क्या? कि फिजिकली मस्जिदों को गिरा देना, मस्जिदों को बंद कर देना, उनको ताले लगा देना, शट डाउन कर देना, या मस्जिदों पे कब्जा कर लेना, या मस्जिद बनाने नहीं देना, ये सारा फिजिकल है। ठीक है, या फिर वैसे जैसे उन्होंने, काफिरों ने, मुशरिकीन ने मुसलमानों को रोक दिया था, फिजिकली रोक दिया था कि वो नहीं आ सकते, वो सारा यानी हिस्सी है, फिजिकली इस चीज को बंद कर दिया। ये भी होता है लेकिन कम होता है। मगर दूसरा मानवी, कि मस्जिद को वीरान करना और वहां पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए, इस चीज की कोशिश करना। ये कैसे होता है? एक तो इस तरह कि वहां पर बजाय अल्लाह का नाम लेने के, या अल्लाह के नाम के साथ ही शिर्क भी करना, शिर्किया चीजें करना, ये भी मस्जिद को वीरान करना है। क्योंकि मस्जिद तो आबाद किससे होती है? अल्लाह के जिक्र से आबाद होती है। मस्जिद वीरान हो जाती जिस जहां पे, चाहे जितने भी लोग आए हों, इट डजेंट मैटर, बात यह कि ये उसकी वीरानी है कि वहां पे अल्लाह का जिक्र ना हो और दूसरों का जिक्र हो रहा है, या शिर्क का अड्डा बन चुकी है वो। अगर वहां पे बैठ के शिर्किया अशार कहे जा रहे हैं, या वहां पे बैठ के कहीं ऐसी, चाहे वो औलिया अल्लाह हैं, उनको अल्लाह ताला के बराबर किया जा रहा है, ये सारी चीजें मस्जिदों को वीरान करने वाली हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है मस्जिद वीरान करने का और मस्जिद से लोगों को रोकने का। दूसरा ये कि मस्जिद तो है वहां पे, लेकिन एक तो मैंने आपको बताया ना, अल्लाह के जिक्र की जगह शिर्क की बातें हैं। दूसरा ये भी कि अल्लाह के जिक्र की बजाय वहां पर और चीजें की जाएं। मसलन है, शेरो शायरी हो रही है, कॉमेडियंस को बुलाया जा रहा है, कॉमेडी हो रही है, या मुशायरे हो रहे हैं, या फिर वहां पे और ऐसी बातें दुनियादारी की हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसाजिद में दुनियादारी की बातें ना किया करो। ठीक है, अब ये मस्जिदें इसके लिए नहीं है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए। तो ये तरीका भी है मस्जिद को वीरान करने का। तीसरा एक और तरीका भी है, वो ये कि वहां पर ऐसे लोग हों जो के लोग आए जब, तो उनके साथ बदअखलाकी करें, बदतमीजी करें, उनको जलील करें, या उनको डांटें डपटें कि वो मस्जिद से भाग जाए। ये भी मना करना ही है ना, ये भी मना ही कर दिया आपने। जाहिर है जब बच्चे या यंग लोग वहां पे नहीं जाएंगे, तो वहां पे डांट पड़ती है, या वहां पे अगर पहली सप में खड़े जाए, चलो पीछे जाके खड़े हो, तो या यूथ है तो अब आप कोई आ ही गई है बच्ची, तुमने ऐसा क्यों पहना हुआ है, तुमने ये क्यों किया हुआ है, तुम वो क्यों कर रही हो, उनको डांटना शुरू कर दे। कुछ लोग अपने आप को मस्जिदों के कर्ता धर्ता समझते हैं, वो समझते हैं कि हम जिसको जो मर्जी कहें यहाँ पे, जो आए बस मस्जिद जैसे मेरा मेरी मिल्कियत है। तो ऐसे नहीं, और भी मस्जिद को वीरान करना ये भी है, या मस्जिद से रोकना ये भी है कि वहां पर सियासत की बातें हों, मस्जिद में इतनी पॉलिटिक्स हो के लोग दूर भाग जाएं। फिर और भी पॉइंट है कि मस्जिद को गंदा रखना, कालीन गंदे हैं, वहां पे स्मेल है, खाने पीने की स्मेल आती है, ये आती है, ये भी मस्जिद को वीरान करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है ना, रुए जमीन पर अल्लाह ताला के नजदीक जो बेहतरीन जगह हैं वो क्या है, मस्जिदें, और जो बदतरीन जगह हैं वो क्या है, बाजार। ये मतलब नहीं कि आप बाजार नहीं जा सकते, बाजार जाएं, जाहिर है बाजार जाना जरूरत है। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम और उनकी वालदा के बारे में फरमाया था कि वो बाजार भी जाते थे, तो यानी ये बाजार जाना कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को पसंद नहीं है बाजार, वो गफलत की जगह है, और सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को महबूब जगह मस्जिद है। तो मस्जिदों को आबाद करना ईमान वालों का काम होता है, जो ईमान वाले होते हैं। और मस्जिद वीरान, आज क्या है, मस्जिद वीरान है और बाजार आबाद है। जिसको आबाद करना था वो वीरान हुई पड़ी है, क्योंकि ये भी मस्जिद की वीरानी है कि कयामत के नजदीक मस्जिदें जो होंगी वहां पे नमाजी बहुत कम होंगे, बहुत कम लोग नमाजी होंगे। आज बाजार तो भरे पड़े हैं, अब मॉल में रात के 11 बजे भी चले जाएं तो मॉल्स में लोग घूम रहे होते, लेकिन मस्जिदों में कितनी तादाद होती है। रमजान के रमजान मस्जिदें कैसे भर जाती हैं, और बाकी सारा साल दो चार सफों के अलावा कुछ भी नहीं होता, खाली पड़ी रहती हैं, कोई जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि हमने अपने घर इतने सजा लिए और इतना उसमें एंटरटेनमेंट का सामान है कि हम बस उसमें से निकलेंगे कभी तो मस्जिद जाए ना, उस एक के बाद एक चीज। अब ड्रामा कौन छोड़ के जाए, अब ये फिल्म लगी हुई है, अब ये गेम आ रही है, ये स्पोर्ट्स आ रही है, या हमारी महफिलें ऐसी हैं जो गफलत की हैं, उसमें से कोई भी नहीं उठ रहा, तो फिर मैं क्यों जाऊं। तो बाजार आबाद हैं और मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें तामीर की भी जाती हैं लेकिन मस्जिद सिर्फ रंग रोगन करने से, खूबसूरत शैंडलियर लगाने से, खूबसूरती करने से नहीं आबाद होती, लोगों के आने से आबाद होती हैं। मस्जिद को आप चाहे जेबो जीनत नहीं भी करो, लेकिन मस्जिद में आबादी होनी चाहिए। और दूसरा, मस्जिद को पाक साफ रखने का हुक्म दिया गया है, उनको धोने का हुक्म दिया गया कि मस्जिद को पाक साफ रखो और खुशबू लगाया करो। हमारे लिए हमारी मस्जिद जो है हमारे घर से ज्यादा हमें महबूब होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। मैं अपने घर को कितना संवारती हूं, कितना साफ रखती हूं, अल्लाह के घर के लिए वहां भी चीजें फेंक दी, उधर फेंक दी, परवाह नहीं की, किसी ने टिश्यू फेंका हुआ है, किसी ने खा के वहां पे छिलके फेंके हुए हैं, किसी ने रैपर फेंका हुआ है, जूतियां वैसे ही फेंक के चले गए। घरों में तो हम बड़े इसका एहतमाम करते हैं कि हर चीज अपनी जगह पे होनी चाहिए, जूतियां रैक में रखी ही नहीं, वहीं पे बाहर ही छोड़ के चले गए, बच्चों को खुला छोड़ दिया, मस्जिद ना हो गई प्ले ग्राउंड हो गया, बच्चे दौड़ते फिर रहे हैं। आप मुझे बताएं किसी जगह आपने लेके जाना हो, बच्चे क्या स्कूलों में इस तरह ही करते हैं, क्लासरूम्स में अपने, कहीं आपने ऐसी जगह पे लेके जाना हो वहां पे कहते तमीज से बैठना, घर से भी 10 दफा गाड़ी में आप कहते जाते हैं वहां पे ये ना करना बदतमीजी, वहां पे ऐसे ना करना, ये इतनी हिदायत देते। मस्जिद ले जाने के लिए कोई हिदायत की जरूरत नहीं, वो तो ओपन फॉर ऑल है ना, बच्चे जो मर्जी करें, इतना शोर, इतनी बदतमीजी, कोई नमाज ना पढ़ सके, लेकिन नहीं, हमने तो वहां पे ही बैठना, बच्चे को लेके बैठना है, बच्चे को उठाना भी नहीं है, मेरी नमाज ना खराब हो जाए। अब बच्चा रो रो के सारे मस्जिद को सर पे उठाया हुआ उसने, लेकिन हम ना बच्चे को ना उठा ले हम, हालांकि इसकी इजाजत है, आप बच्चे को उठा ले नमाज में ही अगर वो रो रहा है तो, और बच्चे जो बड़े बच्चे हैं उनको भी नहीं तमीज सिखाते कि भाई वो आराम से बैठ जाएं। ये नहीं कि बच्चों को लेकर ना हो मस्जिद, लेकर आओ और उनको अदब सिखाओ कि मस्जिद में जाने का क्या अदब है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसमें क्या होना चाहिए। उलाई कमा काना लहुम अय्यदुलूहा इल्ला खौइफीन, उनको नहीं चाहिए था कि इसमें जाते, मगर ये इस तरह के डरते हुए, मुशरिकी ने मक्का के बारे में तो कहा गया कि उनको यहां पर कैसे जाना चाहिए था, बजाय इसके कि वो लोगों को मना करते हैं, उनको तो डरना चाहिए कि ये किसका घर है, अल्लाह का घर है, हमें डरना चाहिए इस चीज से कि हम किसी को कैसे रोकें इसे। और बाकी सबको भी ये चीज का समझना चाहिए कि अल्लाह का घर है, हमारे दिल के अंदर एक डर होना चाहिए कि अल्लाह के घर की बड़ी हुरमत है, उसकी बड़ी इज्जत है, हम यहाँ पे गंदगी ना करें, हम यहाँ पे शोर ना करें, हम यहाँ पे बदतमीजियां ना करें, बदअखलाकियां नहीं, ये अल्लाह का घर है। जैसे मैंने कहा आपको कि हम अपने घर के लिए सारे एटिकेट्स जानते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए कोई एहतराम नहीं है। वहां पे लड़ाइयां भी चल रही हैं, वहां पे चीखना चिल्लाना भी हो रहा है, वहां पे एक बार जगह पे ये भी देखा गया, एक ने माइक पकड़ा हुआ, सियासत इतनी है, उससे माइक छीना, बदतमीजी कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं, सियासत की अखाड़े बना लिए मस्जिद में, इलेक्शन हो रहे हैं, दूसरे पे कीचड़ उछाले जा रहे हैं। क्या इसी तरह हम अपने घरों में भी करते हैं? अपने घरों में तो बस आराम और सुकून चाहते हैं, अपने घरों में तो चाहते नहीं है कि कोई पॉलिटिक्स हो, मस्जिद के लिए सारी पॉलिटिक्स रखी हुई है, और वहां आने वालों को इज्जत नहीं देते, इस तरह से हम वीरान करते हैं, उनसे बदअखलाकियां करते हैं। हालांकि सोचें, अपने घर में हमारे मेहमान आ जाएं तो हम उनको कितनी इज्जत देते हैं, और जो मस्जिद में आने वाला है ना, वो अल्लाह का मेहमान है, अल्लाह का मेहमान है वो, उसको कितनी इज्जत मिलनी चाहिए, मेरे घर के मेहमानों से ज्यादा उसकी इज्जत मुझे देनी चाहिए कि ये अल्लाह का मेहमान है, ये अल्लाह के घर आया हुआ है। लेकिन हम कहीं कोनियां मार रहे हैं, आप देख लें, आप वहां पे हरम में जाके देखें, किसी को बैठने नहीं देना, अगर किसी को देख लिया कि कोई आ रहा है ना, तो थोड़ी जगह है तो और चौड़े हो गए, इधर बैग रख लिया, उधर किताब रख ली, इधर पैर बिछा दिए, कहीं कोई आके बैठ ना जाए। ये हमारा मस्जिदों का एहतराम है, ये नहीं सोचते कि अल्लाह का मेहमान है, मैं इसको इज्जत दूं। इसी तरह किसी को धक्के दे रहे हैं, किसी को बुड़बड़ा रहे हैं, उधर हटो तुम ऐसे करो, चीख रहे हैं वहां पे, लोगों के साथ बदतमीजियां करने लगे हुए, बदअखलाकी से पेश आ रहे हैं, ये हमारा माहौल आज मस्जिदों का। और अगर उसके बाथरूम में चले जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही, अपने घर में तो बाथरूम बहुत साफ रखने का सोचते हैं, लेकिन वहां पे वजू ना हो गया, नहाने ही बैठ जाते, हर तरफ पानी, और फिर उसको साफ करने की भी नहीं कोई वो कि भई इसको साफ करके ही हम जाएं, ये अल्लाह का घर है। मैं आपको ये अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताती हूँ कि एक जगह पर, वहां पे उन्होंने चर्च में वो टाइम लेते थे, वहां पे मस्जिद नहीं थी तब, तो चर्च में वो टाइम लेते थे जुमा पढ़ाने के लिए। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि उस चर्च के जो बाथरूम थे वो किस कदर साफ थे कि ऐसा लगता था कभी यूज ही नहीं हुए। और हम अपनी मस्जिदों के बाथरूम देख लें, हम क्या करते हैं वहां पे, टॉयलेट्स को ब्लॉक कर देते हैं, टिश्यू इधर फेंक देते हैं, पानी हर तरफ फेंका हुआ है, कोई ख्याल नहीं है। आप आगे पढ़ेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने इब्राहिम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर इतने बड़े, उनको भी कहा गया कि मेरी मस्जिद को साफ रखो, उनको हुक्म दिया गया, वो पैगंबर हैं, वो कोई वो नहीं है कि कोई, आप सोचेंगे कोई मस्जिदों की सफाई करने में तो हम तो उनको बहुत छोटा समझते हैं कि कुछ ने मस्जिद की सफाई कर ली, अल्लाह ताला ने उनको भी फरमाया मस्जिद को पाक रखो, उनके लिए जो आए यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए, तवाफ करने के लिए। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मस्जिद में जाने का तरीका क्या है, हमारे जहनों में क्या है, जब हम मस्जिद जाते हैं मैं किधर जा रही हूँ, अल्लाह के घर, इसमें मुझसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो अल्लाह ताला की नाराजगी का हो, मैं डर के जाऊं कि कहीं आए मेरे ये ना हो कि मेरी कोई नेकियां खराब हो जाए, और मैं कहीं लोगों को मना तो नहीं, रोकने वाली तो नहीं बन गई मस्जिद से, और यहाँ पे मस्जिद में अल्लाह का ही जिक्र हो ना, कि मस्जिद भी अब बाजार बन गए, वहां पे भी बाजार लगा लेते हैं, वहां पे भी जैसे कोई फैशन शो हो रहा है, लोग ऐसे हाल हुलियों में आते हैं। इस मस्जिद को वीरान करना है, मस्जिद के तकद्दस को समझें, ये बड़ी ऑनरेबल जगह है, जमीन की, पूरी जमीन की बेस्ट जगह पे आप जाते हैं जब, तो और अल्लाह का जिक्र की जगह, अल्लाह का घर जिसको कहा गया, उस जगह के ऊपर हम जब जा रहे हों तो हमारा रवैया बदलना चाहिए, और तमीज हमें बच्चों को भी सिखानी चाहिए, आप बच्चे को किसी वजीर के घर, अमीर के घर लेकर जाएं, तो आप देखें आप बच्चों को ऐसे ही लेकर जाएंगे, और फिर उनको इसलिए सिखाएं और लेकर भी जाएं कि उनको मस्जिद का पता चले, उनको आदत पड़े मस्जिद की, और उनको ये भी पता हो कि हर जगह पे एक जैसा नहीं होता, मस्जिद प्लेग्राउंड नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा कि इस्लाम में उसके नाम के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। अल्लाह हू अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, के इस्लाम का नाम ही होगा हम मुसलमान, हम मुसलमान, इस्लाम 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 तो बहुत बोला जाएगा, नाम ही रह जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। और कुरान में उसके रस्मुल खत, रस्म के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा, यानी ये जो अल्फाज है ना, बस यही होंगे, इन्हीं को पढ़ पढ़ के लोग खुश होते रहेंगे, बस ठीक है। हमारे पास कुरान है, लेकिन ना कोई इस पे अमल ना कुछ। और उनकी मसाजिद आबाद तो बहुत होंगी मगर हिदायत से खाली होंगे। अल्लाह अकबर, आबाद बहुत है लेकिन हिदायत से खाली है, हिदायत नहीं। जहां पे पॉलिटिक्स हो वहां पे क्या हिदायत है? ये कौन सी खिदमते खल्क है बताएं, ये कौन सी नेकी है जिसमें दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल के, और मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं फलां बन जाऊं मस्जिद का, मैं उसका जो भी उसके ओहदे हैं, मेरे पास ये ओहदे हो, इतना इसका लालच कि उसके ऊपर दूसरों की बुराइयां, और उसको लेट डाउन करना, और उसको पर इतनी बातें बनाना, और छीना झपटी हो रही है, और ऐसे के एक एक वोट के पीछे लड़ रहे हैं लोग, और उसको बुरा उसको बुरा, ये कौन सी खिदमत है, ये कौन सी नेकी है? अल्लाह अकबर, तो मस्जिदें आबाद होंगी, हिदायत से खाली होंगी, हिदायत का सामान नहीं होगा वहां पे, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स रह गई है। और उनके उलमा आसमान की छत के नीचे की बदतरीन मखलूक होंगे, क्योंकि उलमा ने ही तो उनको सही करना था, वो तो ऐसे होंगे कि वो ही बदतरीन होंगे, फितना उनमें से ही निकलेगा और उन्हीं में लौट जाएगा। यानी इनका काम सिर्फ फितना ही फैलाना होगा, लोगों को भड़काना, इधर भड़का लिया, इस पार्टी को भड़का दिया, उसको भड़का दिया, या लोगों को लड़वाना, अपने अपने फिरके की बातें करना, ओ जी फलां काफिर फलां काफिर। अब लोगों को इतना इश्तियाल दे देते हैं, इतनी उनकी ब्रेन वॉशिंग कर देते हैं कि वो उठते हैं और उनको सारे लग रहे होते हैं वो भी काफिर वो भी काफिर, मुसलमान को मुसलमान के खिलाफ ही खड़ा कर देते हैं। जाहिर है जब दीन पेशा बन जाता है ना, प्रोफेशन बन जाता है, तो फिर यही होता है ना, हर एक ने अपनी दुकान जो चमकानी है। अब अगर लोगों को ये नहीं बताएंगे और वो सारे मिलके एक हो जाएंगे, तो फिर तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? हमने लोगों को दूसरों के खिलाफ करेंगे तो फिर ही कुछ होगा ना, कि हमारी बड़ाई होगी। ग्रो ग्रो बना के रख देना, ग्रो बंदियां कर देना, तोड़ के सबको रख देना, तो उसके अंदर हमारी वाहवा है, फिर ही तो मेरे फैन बनेंगे ये। लहम फिद दुनिया खिजियों वलहम फिल आखरत अजाब नज़ीम, इतना बड़ा गुनाह है ये कि इसके लिए दुनिया में भी रुसवाई और आखरत में भी बड़ा अजाब है। जो लोग ऐसा करते हैं, मस्जिदों को से मना करते हैं, मस्जिदों के अंदर खराबी फैलाने की कोशिश करते हैं, वीरान करने की कोशिश करते हैं इनको, और वहां पे डरते भी नहीं जाते, बल्कि वो बस अखाड़ा समझते हैं मस्जिद को, ये छोटी बात नहीं है, आइंदा के लिए ये अमल की बातों में लिखें कि जब मैंने मस्जिद जाना है तो मुझे पता होना चाहिए मस्जिद का एहतराम क्या है, मस्जिद कैसे जाया जाता है, और मस्जिद में मैं डरते हुए जाऊंगी मेरे से कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जो इसके एहतराम के खिलाफ हो। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह ही के लिए मशरिक और मगरिब। असल में जब मुसलमान हिजरत करके आ गए थे, तो उसके बाद उनको बहुत ये हुआ कि अल्लाह अकबर, हम वहाँ पे तो काबा भी था और बैतुल मकदस की तरफ भी नमाज पढ़ते थे, अब बैतुल मकदस की तरफ पढ़ते हैं, काबा हमसे छूट गया। बाद में भी ऐसा हुआ जब अल्लाह ताला ने डायरेक्शन चेंज करने का कहा, तो यहूदियों को मौका मिल गया और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ये क्या बात हुई, ये इनका तो कोई हाल ही नहीं है, कभी एक तरफ किबला कभी दूसरी तरफ किबला। और आगे किबले की चेंज की बात आएगी सय्यकुलु सुफहा में, सेकेंड पारे के शुरू के अंदर ही, तो पहले से उसकी उसके लिए प्रिपेयर कर दिया गया कि इस चीज के ऊपर इतना दुख ना करो। फातुल्ला, जिधर भी तुम रुख करोगे ना उधर अल्लाह ताला का चेहरा है, इन अल्लाह वासिअन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला है, इल्म वाला है। तो ये अल्लाह ताला किसी खास डायरेक्शन में नहीं है कि इस तरफ ही है तो ये अल्लाह ताला, इस तरफ ही है अगर इस तरफ ही नमाज पढ़ी तो फिर क्या, नहीं, जिधर भी नमाज पढ़ लोगे अल्लाह ताला को पाओगे। तो ये भी इसके अंदर उलमा ने कहा है कि इसके अंदर मुसाफिर के लिए भी है, कि अगर मुसाफिर कहीं ऐसी जगह पे है, किसी सवारी के ऊपर है, या पता ही नहीं चल रहा किस तरफ वो किबला है। तो जिस तरफ की भी अपनी सोच के साथ सोच के कि किधर हो सकता है, उधर को नमाज पढ़ ले। सहाबा के साथ ऐसे हुआ था, वो कहीं गए, वो जंगल था, वो एक तरफ उन्होंने नमाज पढ़ ली, अगले दिन पता चला इस तरफ तो किबला नहीं था, दूसरी तरफ था। तो अब परेशान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी। कोई बात नहीं, जो तुमने जिधर भी पढ़ लिया अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। अगर गलत पढ़ ली आपने, पता नहीं था, तो कोई मसला नहीं है, जिधर भी पढ़ लोगे उधर अल्लाह ताला को पाओगे। और एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता इससे भी ये भी निकलता है कि मशरिक और मगरिब तो सब अल्लाह का है। आप वेस्ट में चले जाए ना, वो भी अल्लाह का ही है, और ईस्ट में चले जाए वो भी अल्लाह का ही है। वेस्ट में जाना इटसेल्फ कोई खराब नहीं, वहां पे जाके भी अल्लाह ही है। ये नहीं कि वहां पे जाके आप वेस्ट में पहुंच गए तो आप अपना दीन ही मान ही छोड़ दें, आप वैसे ही बन जाएं, और बस अब क्योंकि हम तो अब वेस्टर्न कंट्री में है ना, तो वेस्ट हो या ईस्ट हो, अल्लाह ताला तो हर जगह पे वो उसी के दीन पे चलना है। ठीक है, और यहाँ पर वाहदतुल वजूद का जो अकीदा है कि अल्लाह ताला जमीन के अपनी मखलूक के अंदर ये है, और अल्लाह ताला ऐसे है, अल्लाह ताला अपनी मखलूक से अलग है, उसके लिए हैं मशरिक और मगरिब। ठीक है, आगे भी आएगा तो उसके पर आप जानेंगे इसको। वकालु तखद अल्लाह वलदा, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने औलाद ठहरा ली, जैसे कि ईसाई कहते थे, और यहूद का भी एक सेक्ट है जो ये उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहता, और मुशरिकीन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं। सुबहाना, वो ये ऐसे ही है जैसे हम कहें सुबहान अल्लाह, पाक है वो इस चीज से, इस शिर्क से वो पाक है कि उसकी औलाद हो। बल्कि लहू माफ़ समावाती गल, उसके तो आसमान और जमीन की मिल्कियत तो उसकी, उसको औलाद की क्या जरूरत है, सारे आसमान और जमीन उसके हैं, वो उनका मालिक है, वो उनका खालिक है। औलाद की तो जरूरत उसको होती है जिसने उसके बाद किसी को अब डेलीगेट करना हो अपना, वो नहीं रहेगा तो उसके बाद उसकी औलाद चलेगी, उसकी नस्ल चलेगी, या उसको कोई सी हेल्प चाहिए किसी से, नहीं, उसके तो सब कुछ उसी का है, उसी की मिल्कियत है, उसी के लिए है। और लहू शुरू में जब आ जाता है इस तरह से, तो फिर सिर्फ उसी के लिए, किसी और का नहीं है ये, और यानी उसकी सारी उसकी मखलूक है, ये भी इसका माना है, सब उसकी मखलूक है, वो मालिक है। तो जब किसी का कोई मालिक हो तो उसका बेटा थोड़ी उसमें, उसकी औलाद थोड़ी हो सकती, जो भी आसमान और जमीन में, तो चाहे कोई किसी को भी बनाए उसकी औलाद या उसका शरीक, तो फिर वो सोचे तो सही कि वो तो मालिक है सबका, वो उसके शरीक कैसे बन सकते हैं, उसकी औलाद कैसे बन सकते हैं। कुल्लु लहू कानितून, सारे के सार सारे उसी के फरमा बरदार हैं। और ये हम इसमें तौहीद को देखते हैं कि सारे फरमा बरदार उसी के हैं, यानी सब के ऊपर उसका हुक्म चलता है, ना इंसान अपनी मर्जी से दुनिया में आया, ना अपनी मर्जी से दुनिया से जाना है, ना उसका रिस्क अपने हाथ के अंदर है, ना उसका उसकी जवानी अपने हाथ में है कि उसको रोक ले, ना उसका जिस्म उसके हाथ में है कि उसको बीमारियों से आजाद कर ले। सिर्फ क्या चीज है कि इम्मा शाकिर हो इम्मा कफूरा, शाकिर ताकि वो शुक्रगुजार बन जाए या फिर नाशुकरा बन जाए, नेकी का रास्ता इख्तियार कर दे या बुराई पे चले, इतना सी चॉइस उसके पास है। बाकी तो हर चीज अल्लाह ताला की ताबे फरमाने, ये भी अल्लाह ताला ने चॉइस दी तो उसके पास है, वरना हर चीज अल्लाह ताला के फरमा बरदारी में लगी हुई है। कायनात की हर चीज को देख लो कि वो उसके हुक्म पे चल रही है, ये कैसे उसके साथ शरीक हो सकते हैं। और ये इतनी बुरी बात है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है और उसको जेब नहीं देता कि वो मुझे गाली दे, और गाली देना क्या है कि वो मेरी औलाद ठहराता है, जबकि सूरह मरियम में ये है कि ये इतनी बुरी बात है कि करीब है कि आसमान फट जाए और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, किस बात से, अंतर्रहमान वाला था कि ये रहमान की औलाद ठहराते हैं, ये बदतरीन शिर्क है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला महफूज रखे इससे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई है जिसमें तौहीद है, कि ये दुआ जो मांग के जो भी, यानी ये कलिमात कह के जो भी दुआ मांगोगे वो कबूल होती है। क्या है दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंता अल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब जो भी दुआ मांगेंगे इसके बाद वो पूरी होती। वाल ने कहा इसमें इस्मे आजम, इसमें तू तू ही है इलाह, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं, तू अल अहद है, तू अस्समद है, ना तेरा कोई, ना तेरे से कोई औलाद हुई और ना ही तू किसी की औलाद है, तेरे कोई हमसर नहीं। तो सारी मखलूक को अल्लाह का कह सकते हैं आपके कुंबा है। कुंबा का मतलब ये कि अल्लाह ताला उनकी जिम्मेदारी लिए पे, जैसे एक सरबरा होता है जिम्मेदारी लेता है अपने कुंबे की। अहल है, सबकी जरूरियात वो पैदा वो पूरी करता है, सबकी जो भी हाजतें हैं वो पूरी करता है। बदी और समावाती वल अर्थ, बदी है यानी आसमान और जमीन का कोई मटेरियल नहीं था, कोई इनका एग्जाम्पल नहीं थी, कोई इनकी ऐसी चीज नहीं थी, उसने खुद पैदा किया। देखिए इंसान जो है ना एक मटेरियल से दूसरी चीज पैदा करता है। लकड़ी से आपने घर बनाया, या लोहे से आपने गाड़ी बनाई, या आपने कुछ और चीजें बनाई, यानी पहले मटेरियल होता है तो आप उससे कुछ बनाते हैं। अल्लाह ताला के पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं था, उसने उसको खुद पैदा फरमाया। इसी पे कई फिलासफा ने कहा कि देख आसमान और जमीन तो हमेशा से थे, आखिर वो जिस मटेरियल से पैदा हुए वो मटेरियल, वो मैटर कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा ना, तो हमेशा से वो भी हैं। ऐसा नहीं है, हमेशा से इसलिए नहीं है कि उनका तो मटेरियल भी नहीं था। बदी है अल्लाह ताला, यानी ओरिजिनेटर, ओरिजिनली कोई वजूद था ही नहीं, उसके मटेरियल का भी कोई वजूद नहीं था, उसने पैदा किया उनको, आसमानों को भी और जमीन को भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत शिद्दत से दुआ करनी होती थी ना तो फरमाते थे अल्लाहुम्मा या बदी अस्समावाती वल अर्द। देखिए यहाँ पे बदी उ है ना, या जब या लग गया तो बदी अस्समावात आइन के ऊपर जबर आ गई, या जल जलाली वल इकराम, या हय्यू या कयूम। इस तरह से अल्लाह ताला के इन तीन असमा कह लें, या जल जलाल वल इकराम, या हई और या कयूम, इन असमाए हुस्ना के साथ गिड़गड़ा के बड़ी शिद्दत के साथ आप पुकारते थे। तो इन तीन नामों को याद रखें कि जब आप बहुत ज्यादा आपने कोई चीज को अल्लाह ताला से मांगना हो, और बहुत ज्यादा आप कोई चीज को चाहते हैं, बहुत डेस्परेशन है और आप मांगना चाहते हैं, तो अल्लाहुम्मा या बदी अस्समावाती वल अर्द, या जल जलाली वल इकराम, या हय्यू या कयूम, ये कहा करें। ठीक है, वाइजा कदा अमरन फ इन्नमा यकूलु लहु कुन फयकून। उसको क्या औलाद की जरूरत है, उसने तो आप पैदा कर दिया आसमान और जमीन को, मालिक भी उनका है, खालिक भी उनका है, ओरिजिनेटर उनका है, सब उसके इताअत गुजार हैं। वो तो किसी काम का इरादा करना चाहता है, उसको किसी की थोड़ी है किसी की कि कोई उसका बाजू बने, कोई उसके साथ हेल्पर हो, कोई उसके साथ शरीक बने। वो तो जब कोई काम का इरादा करना चाहता है बस कुन कहता है, हो जाता है। वो कुन से मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त कुन कह रहा है, मतलब ये कि बस उसका इरादा करना ही कुन फयकून बस हो जाता है, यानी जो वो चाहता है वैसा ही हो जाता है। वकाल अल्लदीन ला यालमून लौला युकल्लिमुना अल्लाह अव तातीना आया। वो लोग जिनके पास कोई इल्म नहीं, वो कहते हैं क्यों नहीं हमारे पास, हमारे साथ क्यों नहीं कलाम किया अल्लाह ताला ने, और हमारे पास क्यों नहीं कोई आयत आई। ये भी मुशरिकीन ने मक्का का था कि वो कहते थे हमने नहीं मानना, अब बहाने करते थे। कोई कहता हम नहीं मानेंगे जब तक आप हमें यहाँ पे नहरें ना चला के दिखा दें, हम नहीं मानेंगे जब तक सफा मरवा को आप सोने का ना बना दें, इस तरह की डिमांड करते थे। फिर इसी तरह की उनकी डिमांड ये भी थी कि हमसे अल्लाह ताला क्यों नहीं बात करता, हमारे पास क्यों नहीं आयत आ गई, हमारे पास क्यों नहीं कोई मौजा आता, ऐसा कोई मौजा दिखाएं, ऐसा कुछ दिखा दें। कदालिका काल अल्लादीना मिन कब्लिहिम मिथला कौलिहिम, ऐसे ही लोगों ने पहले भी कहा था, मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं कह दिया था कि हमें अल्लाह ताला को दिखा तो फिर हम मानेंगे, कौमे समूद ने नहीं कह दिया था ऊंटनी निकाल के दिखाओ तो हम मानेंगे। तशाबत कुलूबुहुम, इनके दिल मिलते जुलते हैं, एक ऐसी बातें पिछलों ने की, यानी इंसान ये ना कहा करे कि मुझे कोई साइन नजर आए, पहले कोई साइन नजर आएगा तो फिर मैं मानूंगी। अब आपने साइन देख के ही मानना है तो फिर तो साइंस तो अल्लाह ताला की निशानियां कुदरतें हर तरफ फैली। तो यहूद ने भी यही कहा, मुशरिकीन ने भी यही कहा, ये इन सारों के यही तरीके रहे हैं, और आज भी कई लोग ऐसे कहते हैं हम तब मानेंगे। कद बैयन्नल आयाति लिकौमी यूकिनून, जिन्होंने यकीन रखना होता है ना उनके लिए तो अल्लाह ने बहुत सारी आयतें बयान कर दी, कुरान में भी आयतें और कायनात में भी आयतें, जिन्होंने यकीन करना हो। अब जिसने ना मानना हो तो फिर कोई भी चीज उसको नहीं मनवा सकती। इन्ना अरसलना कबिल हक बशीर व नदीरा, ए नबी हमने आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप इनसे मनवा के ही रहे, हमने तो आपको इसलिए भेजा है साथ हक के कि आप खुशखबरी सुना दें किनको, जो मान जाए, और नजीर बना के भेजा है। उन नजीर कौन थे? नजीर वो जो वॉर्न करता है लेकिन शफकत के साथ, तो खौफजदा करना नहीं है इसमें कि खौफ दिला दिया, बल्कि जैसे आपको कहा जाए कि ओ आज आप वहां ना जाना, वहां पर बहुत यानी कोई ऐसा खतरा है, आज आप इस जगह पे जाएंगे, या आगे गाड़ी ना लेकर जाना, वहां पे आगे डाकू हैं। तो ये क्या है, ये आप कह सकते हैं कि डराना, इसीलिए हम तर्जुमे में लिख देते, लेकिन असल में आपने वॉर्न कर दिया किसी को कि देखो खतरा है आगे। तो इन लोगों को डराया जाए, इस तरह से खबरदार किया जाए, इसके लिए हमने आपको भेजा। तो यानी हमें ये समझ आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम लोगों को जबरदस्ती मनवा लेना नहीं था। यही बात को अगर कोई भी दाई दीन समझ ले तो उसका काम बड़ा आसान हो जाए, क्योंकि अब ये लोग आपसे ऐसी डिमांड्स करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे किसी तरह मान जाए, मैं पूरी कर दूं इनकी किसी तरह डिमांड, तो ये किसी तरह भी मान जाए, लेकिन आपका काम ये नहीं है। आपको हक के साथ अल्लाह ताला ने भेजा, हक क्या है, इस कुरान के साथ, इस्लाम के साथ, ये हक क्या है, सच्चाई है, इसके साथ भेजा है कि आप लोगों को बशारतें दे, जो मान जाए, जो नहीं माने आप उनको वॉर्न कर दे, और यही आपने सफा पहाड़ पे चढ़ के किया था। स्टार्ट वार्निंग से ही होता है, ये नहीं होता कि आज तुम जो कर रहे हो ना बड़ा अच्छा कर रहे हो और ऐसे ही करते जाओ, कोई बात नहीं तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी है, इससे कौन मानेगा। वला तुसअलु अन असहाबिल जहीम, आपसे नहीं पूछा जाएगा असहाबिल जहीम के बारे में, जहन्नुम वालों के बारे में, कि जो लोग जहन्नुम में क्यों चले गए, इन्होंने क्यों नहीं माना, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको भेजा गया था, आपने मनवाया क्यों नहीं, ये आपका काम नहीं है, और ना ही आपसे इसका सवाल किया जाएगा, और ना ही किसी भी दाई दीन से इसका सवाल किया जाएगा कि लोग इतना क्यों बिगड़ गए थे। आपका काम है बता देना, पहुंचा देना, आप दारोगा नहीं है। आपने आपका अपना काम पूरा कर दिया जब आपने पहुंचा दिया, तो अब लोग अगर खुद आग के में जाके पढ़ना चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ना, मेरी मिसाल ऐसी है, मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं कि तुम आग से बच जाओ, लेकिन तुम ओके ऐसे जैसे पतंगे नहीं जाते और आग के अंदर गिरते जाते हैं, इस तरह से तुम जाते जा रहे हो आग की तरफ, मैं तुम्हारी कमरे पकड़ पकड़ के तुम्हें खींच रहा हूं, लेकिन आपसे सवाल नहीं होगा, आपको इसके ऊपर ब्लेम नहीं किया जाएगा कि लोग इतने क्यों जहन्नुम में एंड अप हो गए, आपने क्यों नहीं काम किया, एज लॉन्ग एज आपने अपना काम जिम्मेदारी पूरी कर दी। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचाना है, और उम्मत की भी जिम्मेदारी सिर्फ यही है। तो अब अगर आप ये सोचेंगे ना, मेरे हाथों से कितने लोग मुसलमान हुए, अच्छा एक भी नहीं हुआ आज तक, तो ठीक है फिर अब इस काम को करने का क्या फायदा, ये नहीं आपने करना, आपने ये देखना मैंने कितने लोगों तक पहुंचा दिया बस। इसलिए जबरदस्ती लोगों को कुरान की तरफ भी ना ऐसे लेकर आए करेंगे, नहीं आप साइन नहीं करें, आप साइन, आपका काम है उनको बता देना, जिसके अंदर खैर होगी वो खुद आएगा, आपने बस बता देना है कि देखो ये एक अपॉर्चुनिटी है, तुम सीखो, तुम समझो, तुम आओ, लेकिन जबरदस्ती ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी ना आपके उम्मतियों की है कि जबरदस्ती लोगों को ये दीन उनके हलक में उतारें या उनको मुसलमान ही करके रहें। आपकी कामयाबी किसमें, आपने कितना पहुंचाया, ठीक है, तो इससे डिसहार्ट ना हो अगर कोई मुसलमान ही, और बड़ा कुछ लोग बड़े खुश होते हैं मैंने इतने लोगों को मुसलमान मेरे हाथों पे हुए, ठीक है हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो भी नाकाम नहीं है जिसने पहुंचा दिया, क्योंकि कयामत के दिन कुछ अंबिया ऐसे भी आएंगे जिनके साथ कोई भी नहीं उम्मती होगा, तो क्या वो नाकाम हो गए, नहीं। वलन तरदा अंकल यहूद वलन नसारा, ये यहूदी और नसारा अगर ये आपको कहते हैं हमें ये दिखाओ वरना हम तो मानेंगे नहीं, तो ये तो आपसे कभी भी नहीं राजी होंगे, आप इनको कुछ भी कर दें, आप कोई बंदा ये भी कह देना जैसे मुसलमान जाके उनको तबलीग करें और उनको कहते हैं कि हम ईसा अलैहि सलाम को भी और मूसा अलैहि सलाम को भी मानते हैं, तो इस पे भी वो खुश नहीं हो जाएंगे आपसे, हत्ता यहां तक कि तत्तबे मिल्लत हम, मिल्लत क्या है उनका तरीका, उनका रास्ता, जब तक उनके रास्ते के ऊपर पूरे नहीं आ जाओगे, यानी अपनी छोड़ दो, तुम अपना दीन छोड़ो और हमारे इस तरीके के ऊपर जो हमारा वे ऑफ लाइफ है इसके ऊपर नहीं आ जाते, तब तक नहीं वो मानेंगे, तब तक वो तुमसे राजी नहीं होंगे। आप हालांकि कितनी बड़ी बात है कि मुसलमान सिर्फ हैं जो कहते हैं हम ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम को मानते, बाकी कोई भी नहीं कहता, ना ईसाई और ना यहूदी, हर एक किसी ना किसी पैगंबर का इनकार करता है सिवाय मुसलमानों के जो सब पैगंबरों को मानते, और इससे भी उनको कोई उनकी रजा नहीं तुम पालोगे, उनका राजी होना किस पे होता है, तुम हमारे तरीके को फॉलो करो। और आज भी किस जगह मैं ये बात सुन रही थी, किसी ने कहा ये तो हमारे अंदर असिमिलेट नहीं होते, हमारे जैसे नहीं बन के रहते, अपने इस्लाम को इस्लामी तरीकों को तो छोड़ते नहीं है, तो ये तो हमारे मुल्क को इन्वेड करना चाहते हैं, तो ये तो हमारे जैसे बन ही नहीं रहे। यानी उनकी क्या ख्वाहिश है कि उनके जैसे बन जाओ, बस जैसे वो है ना वैसे ही तुम रहो, तब इनको चैन है। और कुछ मुसलमानों ने फिर इस हद तक जाके भी कर लिया कि अपना दीन छोड़ के, और ऐसे तो नहीं छोड़ा कि बरमला किया, लेकिन हर चीज उनकी अपनाई सिर्फ इसलिए वो राजी हो जाए। जैसे वो खाते हैं उल्टे हाथ से वैसे ही खाना शुरू कर दिए, जैसे वो जिन चीजों को वो मनाते हैं, क्रिसमस मना ली, वैलेंटाइन मना लिया, हालोवीन मना ली, कि किसी तरह हम इनमें से मिलेट हो जाए, इनके जैसे नजर आए, इनको ये पता चले कि हम भी इनके जैसे हैं, हम कोई अपना अलग ना कुछ तशख्खुस रखें, हम अपने मुसलमान ना नजर आए। कईयों ने अपने नाम भी वैसे रख लिए हैं कि बिल्कुल ऐसे कि जैसे पता ही ना चले कि ये मुसलमान है या फिर पता नहीं गैर मुस्लिम है, इंसान सोच में पड़ जाए वैसे बनने के लिए कि यानी चलो यहां पे भी इस्लाम इस्लाम भी हो जाए, चलो ये भी एक हो जाए, लेकिन उनके अंदर भी हम इन रहे। इसी तरह और उनके ट्रेंड्स, उनकी तरह का ड्रेसअप होना, उनकी तरह का कल्चर अपनाना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डेटिंग कल्चर सब अडॉप्ट कर लिया, मर्दों औरतों का मिक्सअप होना सब कुछ इसलिए अडॉप्ट किया कि हम उनके जैसे लगें, तो इसकी कोई हद नहीं है। फिर वो तो नहीं राजी होंगे इस तरह, जब तक आप सारा अपना दीन सब कुछ गिव अप ना करते। बेहयाई से अल्लाह ताला ने मना किया, और बेहयाई के जितने काम है वो सारे कोई मसला ही नहीं उसमें, क्योंकि वो करते हैं इसलिए सब अच्छे हो गए, हमने बस उनको कॉपी करना है, वो गो के बिल में भी जा रहा हो तो हमने वो भी कॉपी करना है कि वो वैसा ही हम भी करें, चाहे अल्लाह ताला उसे नाराज होता, अल्लाह ताला ने उसे मना किया हो, लेकिन हमें बस उनको फॉलो करने की इतनी ख्वाहिश हो गई, सिर्फ उनके अंदर जचने के लिए, सिर्फ उनके अंदर सिमुलेट होने के लिए, इन होने के लिए, सिर्फ उनके जैसे लगने के लिए कि हमारे और उनके अंदर कोई फर्क ही ना पता चले, सब कुछ वैसा कर लो कि कोई ना पता कह सके कि ये उनमें से हैं कि ये मुसलमान है। हालांकि कुल इन्ना हुदल्ला ही हुवल हुदा, हिदायत असल में वही है जो अल्लाह ताला ने हिदायत दी, और वो कुरान की शक्ल में आपके पास आ चुकी है, जो इसको कबूल करेगा वो है असल सीधा रास्ता, वो है हिदायत का रास्ता, इनके रास्ते हिदायत के रास्ते नहीं है, ये तो मगदूब अलैहिम और दौलीन है, इनके रास्ते पे चलो, सारा वक्त नमाजों में कहते रहे एदिन सिरातल मुस्तकीम, और फिर जब जिंदगी में मुसल्ले से उठे, जिंदगी में और काम करने शुरू किया, तो फिर उनके तरीकों पे चलना। आज मुसलमान ने अपना इस्लाम ही छोड़ दिया। वला इन इत्तबा हुआ हम, अगर तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की कि जैसे वो चाहते हैं कि तुम ऐसे बन जाओ, तुमने वैसे उनके ख्वाहिश के ऊपर चले कि मैं वैसा बन के दिखाऊं, बोलूं तो वैसा बोलूं, पहनूं तो वैसा पहनूं, कल्चर हो तो मेरा वो कल्चर हो, बस सारा उनका कर दिया, बाद अल्लाह जी जा का मिनल इल्म, इसके बाद के तुम्हारे पास तो इल्म आ चुका है, इल्म अल इल्म है, यहाँ पे अल इल्म, आम इल्म नहीं है, अल इल्म यानी मार्फा है, कोई खास इल्म है, वो कौन सा है, कुरान और हदीस का इल्म तुम्हारे पास आ चुका है, अगर फिर भी तुमने, जबकि तुम्हारे पास ये इल्म है, तुम्हें हिदायत का रास्ता अल्लाह ताला ने दिखा दिया है, फिर भी तुम उनके रास्ते पे चले ना, तो तुम मा लका मिन अल्लाह मिन वली मला नसीर, तो तुम्हारे लिए अल्लाह से अल्लाह नहीं होगा तुम्हारे लिए, मा लका नहीं है, होगा तुम्हारे लिए मिन अल्लाह अल्लाह से बचाने वाला, मिन वली मला नसीर, कोई दोस्त और ना कोई मददगार। अल्लाह से कोई दोस्त ना होगा तुम्हारा, ना कोई मददगार होगा, ये तो तुम्हारे लिए खड़े नहीं हो जाएगा कयामत के दिन। फिर सोच लो कि तुम्हारा बनेगा क्या। आज बन जाओ उनके जैसे, और वो रंग चढ़ा लो जो यहूदियों और ईसाइयों का है, और उनकी ख्वाहिशात के ऊपर चल लो। उनकी ख्वाहिश तो यही है कि तुम, वो तो तुमसे इसी पे राजी होंगे, तो सब छोड़ो ये सारी इस्लामी चीजें। आज देखें औरतों ने हिजाब उतार दिए, अपने आप को बिल्कुल उनके रंग में रंग लिया, अपनी हर चीज वैसी कर ली। हालांकि हमारे पास हिदायत का पैगाम है, हालांकि हमारे पास ये इल्म है, फिर भी हम उनकी ख्वाहिश को फॉलो करना, ये हमने अपनी प्रायोरिटी बनाया। बच्चों को भी वैसा करते हैं कि वो उनसे मुतासिर करते हैं कि ये देखो ये ऐसा बनना है तुमने भी। उनको आइडियलाइज करते हैं उनकी चीज़ों को, उनकी, जब हमारे आइडियल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम हैं ही नहीं, तो हम उनके तरीकों को क्या फॉलो करेंगे बताएं। वो हमारे आइडियल ही नहीं है, हमने कभी उनको आइडियल बनाया ही नहीं। और जो जिसको आइडियलाइज करता है और जिससे मोहब्बत करता है, अरे मोहब्बत करते हैं तो आइडियलाइज करते हैं ना किसी को, तो जिसको जो आइडियलाइज करता है वो फिर उसके साथ ही होगा क़यामत के दिन। ऐसा नहीं कि किसी और के साथ उस दिन आप पार्टी बदल नहीं सकते। आज तो इनकी पार्टी में हो गए, कल को क़यामत के दिन उनकी पार्टी में जाके बैठ गए, ऐसे नहीं होता। जिस पार्टी में आज है ना आप, उसी में क़यामत के दिन उठेंगे, ये सोच लें। फिर आज उनके जैसे जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करता है, आपसे सलम ने फरमाया वो उन्हीं में से है। अगर आपने उनकी मुशाबियत की, वो चाहते हैं बस हमारे जैसे बन जाओ, छोड़ो ये मादर पिदर आज़ाद रहो, वो भी अपनी ख्वाहिश के बंदे बने हुए हैं आज तो। मादर पिदर आज़ाद, कोई हमारे ऊपर कानून ना हो, हमारी जैसे मर्जी हो ना हम वैसे ही चलें, तो फिर ठीक है। फिर तो देख लेना, फिर कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं होगा तुम्हारा, तुम्हें कोई बचाएगा कौन वहां पे। बहुत बड़ी धमकी है, हमने अल इल्म को लिया ही नहीं तो हमें पता क्या चलेगा कि अल इल्म में है क्या। हमें क्या पता कि कुरान और हदीस क्या कहता है। अंधाधुंध आज चाहे हम अपने बैक होम देख लें, अपने मुल्कों में देख लें, या कहीं पे भी देख लें, या यहाँ पे भी देख लें, एक ही है जिस तरफ डायरेक्शन, जिस तरफ सब भाग रहे हैं, कौन कितना ज्यादा इनके जैसा बन के दिखा दे। बस किसी जुबान को अपनाना कोई बुरी बात नहीं है, किसी जुबान को जानना भी कोई बुरी बात नहीं है, जुबानें सब अल्लाह ताला की पैदा की हैं, लेकिन सिर्फ इस ख्वाहिश के साथ कि मैं बस उनके जैसी बन जाऊँ, चाहे मुंह टेढ़ा करना पड़े, चाहे कैसा करना पड़े, वैसे ही मैं बस हो जाऊं, ये तो वो देखे मुझे तो उनको लगे कि मैं और वो एक ही हैं। ये ख्वाहिश रखना एक ऐसी बात है कि फिर अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात फरमा दी कि देखो तुम्हारे पास तो अल इल्म है, फिर तुम किस तरफ चले गए। अल्लाह ताला की हिदायत को छोड़ के इनको राजी करने के लिए इस कदर इंसान के सर नीचे पैर ऊपर करके भी मुझे इनका रास्ता इख्तियार करना पड़े तो कर लो। कहाँ कहाँ नहीं हमने किया वा जिंदगी में, जरा देखें किस किस जगह पे नहीं है जो इनके तरीके हमने अपनाए, चाहे वो सेलिब्रेशंस हो, चाहे वो चाल ढाल हो, चाहे वो हमारी प्रेफरेंसेस हो, हमारी थिंकिंग हो, हमारी प्रायोरिटीज हो, हमारे लिबास हो, हमारे कल्चर हो, हर चीज उनकी, क्योंकि हमारी आइडियल वही है जो सच बात है। तो कयामत के दिन तो बड़ा मुश्किल दिन है, फिर तुम्हारा मदद करने वाला कौन होगा। अल्लदीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहू हक्का तिलावती उलाइका युमिनूना बिही, वो लोग जिनको किताब दी गई, किनको इनको किताब दी गई, जिनको भी किताब दी गई, यहूदों नसारों को भी दी गई, मुसलमानों को भी दी गई, यतलूना वो हक का तिलावती, वो इसकी तिलावत ऐसे करते हैं जैसे तिलावत करने का हक है, यही लोग हैं जो इस पे ईमान रखते हैं। इसका मतलब बाकी का ईमान ही नहीं है अगर वो वैसी तिलावत नहीं करते जैसे करने का हक है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे हक है तिलावत करने का, यानी इसका मतलब ये है कि कुराने पाक का कोई हक है उसकी तिलावत का। तिलावत के दो माने मैंने आपको बताया, एक पढ़ना और एक तिलावत का माना है पीछा करना, फॉलो करना, यानी पढ़ते भी वैसे हैं जैसे पढ़ने का हक है, जैसे हमें बताया गया, जैसे इसका तरीका है पढ़ने का, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, और इसके अंदर सही तिलावत करना वो भी है तजवीद के साथ पढ़ना, लेकिन देखें हर कोई तजवीद के साथ उस तरह से कितनी भी कई कोशिश करते हैं नहीं, उनकी जुबान उस तरह से है नहीं कर पाते वो, तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। आप ने फरमाया कि जो कोशिश भी करता है इसका दोहरा अजर है उसके लिए, तो लेकिन कोशिश जरूर करते रहे। मगर हाँ ये जरूरी है कि उसको समझ के पढ़ें, ये जरूरी है। ये भी हक नहीं है कि इसका हिफ्ज होना जरूरी है। इसके हकूक क्या है? इसके हक ये है कि इसके ऊपर ईमान लाया जाए, सबसे पहला हक ये। यानी जितनी किताब में जितनी भी बातें हैं सबको मानना, ये नहीं कि यूमिनून ने भी बादल किताबी व यखरूना भी बाद, कुछ को तो हम मानते हैं कुछ को हम नहीं मानते, ये आयत मेरे मुताबिक की है ये आयत नहीं। अगर मैं वालदैन हूं तो बच्चों को वो पढ़ पढ़ के सुनाएंगे कि हाई देखो कुरान के अंदर है कि वालदैन के साथ एहसान करो। हाँ तो हमारे ऊपर जो है जरूरी वो भी तो हम, वो भी तो आयते हैं अल्लाह ताला की तरफ से हैं, उनके ऊपर भी कभी ध्यान दिया? जो जो अपनी पसंद का है वो तो ले लिया और बाकी छोड़ दिया। ईमान में क्या है, सारे के ऊपर ईमान लाओ। नंबर टू, इसको पढ़ो, पढ़ने का जैसे हक है यानी जैसे इसको पढ़ना चाहिए कोशिश तो करें ना वैसे। नंबर थ्री, इसको समझा जाए और समझने के अंदर भी इसको गौर और फिक्र किया जाए। सहाबा कराम का ये हाल था, तो 10 आयतें पढ़ते थे तो फिर जब तक अमल नहीं करते थे आगे नहीं जाते थे। हज़रत उमर ने कितने सालों के अंदर सिर्फ सूरह बकरा पढ़ी थी? हम तो पहले ही ये दिन आके पूछते हैं कितना लंबा कोर्स है, तो उन्होंने कितने सालों में इसको कवर किया, क्योंकि किस वजह से वो हर चीज पे अमल करते थे। तो फॉलो करने में, पैरवी करने में, इसके पीछे जाने में ये है कि इसको फॉलो इसका ऐसे किया जाए कि सब समझ आ रहा है। तो जितना भी आप इसको ऊपर मेहनत कर रहे हैं ये हक्का तिलावत ही कर रहे हैं, फिर इसके ऊपर अमल करना और फिर इसको आगे तक पहुंचाना। तो ईमान लाना, इसको पढ़ना, इसको समझना, इसके ऊपर अमल करना, इसको आगे तक पहुंचाना, ये हैं इसके हकूक। आप आगे तक खुद नहीं पहुंचा सकते, लोगों को ही बुला लें इसकी तरफ कि आगे सीख लो। कई लोगों को परवाह ही नहीं होती है, लेकिन जिस चीज का ना इंसान को शौक लग जाता है ना या टेस्ट आ जाता है, उसको दिल करता है सबको ये टेस्ट समझ आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी लगन थी कि लोग इस तरफ आए, लोग बच जाएं आपके आजाब से। जिसको इसकी लज्जत आने लगे और जिसको इसका शौक लग जाए वो फिर इसकी तरफ बुलाएगा। अगर आप किसी को नहीं बुलाते ना, इसका मतलब आज तक आपने खुद इसका मजा ही नहीं चखा, आपको खुद नहीं पता इसका, वरना आप रह नहीं सकते थे लोगों को इसकी तरफ बुलाए बगैर। वाक़ा तिलावती जो करते हैं वही हैं जो इसके ऊपर ईमान रखने वाले। तो बाज ने इससे हक्का तिलावत इसे कहा कि नहीं उनको तजवीद में परफेक्ट होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वरना फिर ये आयत है ना, आयत नहीं सॉरी हदीस है कि जो इसके अंदर कोशिश भी करता है उसको डबल अजर मिलता है, और जो माहिर हैं वो तो मुकर्रम फरिश्तों के साथ होंगे, बड़े इज्जत वाले फरिश्तों के साथ होंगे। व मैं यकफुर भी फहुलाए का हमुल खासिरून, जो इसका कुफर करेगा यानी कुफर का मतलब ईमान। अब देखें कॉन्टेक्स्ट देखा करो ना, पहले भी मैंने आपको बताया था ईमान आया था फिर कुफर आया था, तो वो कुफर क्या था, जादू करना, और ईमान क्या था, इसको छोड़ देना। यहाँ पे भी ईमान वाले कौन है, जो इसकी हक्का तिलावत ही करते हैं। जो कुफर वाले हैं वो कौन है, जो इसको छोड़ देते हैं, हक्का तिलावत ही नहीं करते। तो जो कुफर करेगा, चाहे उसको माना नहीं या उसको पढ़ा नहीं या उसको समझा ही नहीं, उसको अमल ही नहीं किया या उसको आगे तक पहुंचाने की नहीं कोशिश की, ये खसारा पाने वाले होंगे, खासिरून होंगे, खसारा पाने वाला है। और इससे पता चला खसारा पाना बहुत बड़ा नुकसान, अल्लाह ताला में खसारे वाले में ना शामिल करे, जब पता चले इंसान को कि बड़ा नुकसान है ये और अल्लाह ताला बता दे अगर, तो कितनी बड़ी बात है। दुनिया में भी किसी जगह पता चले कि यहाँ पे बड़ा नुकसान है तो इंसान उसे बचता है, और अल्लाह ताला ने बता दिया तो क्या कोई खसारा पाने वालों में से होने पसंद करेगा? फिर भी लोग सवाल करते हैं कि कुरान को सीखना या इसको समझना क्या ये फर्ज है, अमल करना फर्ज है क्या, और क्या है हक्का तिलावती में, इसके इसके हलाल को हलाल समझना, इसके हराम को हराम समझना, इब्ने अब्बास ने फरमाया, इसकी जो मना करदा चीजें हैं उनसे बचना, जो जितनी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं ये अल्लाह ताला ने हराम किया है, ये अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, उन सारी हराम करदा चीजों जब या मना की भी चीजों से बचना। तो हलाल को हलाल और हराम को हराम समझते हैं हम जो इसके अंदर बताया गया है। जो इसके अंदर मना किया गया, उसे मना होते हैं कि नहीं होते, ये सब इसके अंदर दाखिल है, सब इसके अंदर शामिल है। और जो इससे कुफर करेगा फिर वो खसारा पा लेगा, और इसको इसके माने को तो रोड़े मरोड़े नहीं, जैसे है एज इट इज उसके ऊपर ईमान लेकर आए, इसकी किस्सों से इबरत लें, ये भी हक्का तिलावती में, जितनी बातें हम अपने लिए इबरत लेते हैं वो हक्का तिलावती में आता है। तो इसकी इत्तेबा करना, इसको फॉलो करना, ये तिलावत का हिस्सा है, यानी समझ समझ के पढ़ना, समझ समझ के इसको आगे फिर ताकि इसके ऊपर अमल किया जा सके। जिसने समझा ही नहीं वो अमल क्या करेगा। तो पहली सीढ़ी तो ये है ईमान, दूसरी है इसको पढ़ना, तीसरी इसको समझना। तो पढ़ना आएगा फिर समझेंगे, जाहिर है, फिर समझेंगे फिर आगे अमल करेंगे, फिर आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। ये सीढ़ियां हैं, आगे से आगे जाना है इसके अंदर। और मोहसिनीन का यही काम होता है, देखें याद रखें, मोहसिन वो होता है जो बेहतर से बेहतर की कोशिश करे। जाहिर आप एक्सेलेंस के लेवल पे आज तो नहीं, एक दिन में तो नहीं पहुंच सकते, चाहे वो कुरान की सीखना समझना है आपका, मुझे सारा कुछ एक ही दिन उंडेल के पिला दो, वो नहीं हो सकता। मोहसिन वो है जो बेहतरी से बेहतरी की तरफ जाता है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है। अगर आज मुझे इतना आया तो इससे आगे जाऊं, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। जैसे एक बंदा है ना, एक बच्चा है, वो कहता है 33% ही मेरे आ जाएंगे बस मैं पास हो जाऊंगा, वो कहता है ये सवाल कर लूंगा बस पास हो जाऊंगा। कई है जो कहते हैं नहीं मेरे A+ ग्रेड आए, और कई है जो कहते हैं पोजिशन मेरी आए। जो अल्लाह ताला के कुर्ब का ये सफर शुरू करता है ना एहसान के लेवल का, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। इससे बेहतर, इससे बेहतर, इससे आगे बढ़ो, वो इसकी कोशिश करता रहता है। अगर मेरी नमाज जो मैं 10 साल पहले पढ़ती थी और आज जो पढ़ती हूँ उसमें कोई फर्क नहीं है, तो क्या सीखा, क्या पढ़ा, कहाँ खड़े हैं? मोहसिन नहीं है फिर, मोहसिन आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। इसी तरह कुरान में भी आगे से आगे बढ़ना है, ये नहीं बस एक दफा पढ़ लिया ना हमारा क्या है, नहीं उससे ज्यादा बेहतर और करो, फिर और करो, फिर और करो। कभी भी अहले इल्म के दिल इससे सैर नहीं होते, ये हदीस में आता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप इल्म वाले हैं और आपका पेट इसे भर जाए कि बस मैंने कुरान पढ़ लिया काफी है। हक्का तिलावत ही की कोशिश करते रहना, इसके हकूक अदा करते रहना, जो कुफर करेगा वो ही खसारा पाने वाले हैं। तो इसलिए कोई ये नहीं आपको कह रहा कि वो कोई बड़े आलिम नहीं जब तक आप बनेंगे तो नहीं, लेकिन हक्का तिलावत ही तो करें। अमल का मैदान तो बहुत वसी है, इस मैदान में जो चलता है तो जाहिर है अमल मुश्किल काम भी है, और इसके लिए बहुत इंसानों को चलते ही रहना। अब वो दो आयते हैं जो 47 और 48 में सेम आयात थी, और इसीलिए हम इसको जल्दी देख लेंगे, वहां पे तफसीर हो चुकी है। या बनी इसराइल अस्कुरू नियामती अल्लती अनामतु अलैकुम, यहाँ पे जाके इन दो आयत पे जाके बनी इसराइल के साथ जितनी भी बात हो रही थी वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है, और उनकी सारी बातें बताई जा रही है। ऐ बनी इसराइल तुम याद करो मेरी नियमतें जो मैंने तुम पर इनाम की, बहुत सारी नियमतें अल्लाह ताला ने इनके ऊपर की जो हमने पहले बात कर चुके हैं। इतने अंबिया इनके अंदर आए हैं, इतने अल्लाह ताला ने इनके ऊपर मुजजात की बारिश की है, इनको सामने अपने दरिया को फटते दिखा दिया, आसा का साम बनते दिखा दिया। वह अन्नी फद्दल तुकुम अल आलमीन, तुम्हें फजीलत दी तमाम जहान वालों पे। क्या फजीलत इनको दी थी कि इनको अल्लाह ताला ने चुना था कि सारी दुनिया तक अल्लाह का पैगाम ये पहुंचाए। ये समझ लें कि ऐसी जॉब आपको कोई प्रेसिडेंट जॉब दे देना अपनी व्हाइट हाउस में तो आप भूले नहीं समाएंगे, हाय मुझे इतनी बड़ी जगह जॉब मिल गई। अल्लाह ताला अपने दीन की जॉब जिसको दे दे कि मेरे दीन को आगे पहुंचाना है तुमने, ये कितना बड़ा ऑनर है। अल्लाह ताला ने, तुम्हारा हक नहीं था, ये अल्लाह का फजल है कि तुम्हें, तुम पे अल्लाह ताला ने किया, लेकिन तुमने क्या किया। तो देखो ये तुम्हें अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी ऑनर से नवाजा, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या क्या खराबियां आ गई। वत्तकू यौमन, तो डरो उस दिन से, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया, जिस दिन कोई नफ्स किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि इंसान अकेला होगा, कोई किसी के काम नहीं आना वाला होगा, इवन वालदेन भी अपनी औलाद के काम ना आ सकेंगे। वला युकबलु मिनहा अदलुन, और ना ही कबूल किया जाएगा कोई फिदिया के इसके बदले में इसको जहन्नुम में डाल दिया जाए, इसका गुनाह फलां अपने सर पे ले ले। हम तो बड़े आसानी से नेकियां भी लोगों को देते फिरते हैं, करूं मैं और दे दूं दूसरे को, और दुनिया में तो गुनाह भी अपने दूसरों के सर पे डाल देते हैं। वहां पे तो नहीं है कोई कर सकेगा। वला तनफाउहा शफात, और ना ही किसी की सिफारिश कबूल होगी, इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिफारिश जिसको अल्लाह ताला इज़न दे कि वो शिफात करे और जिसके लिए करे, वरना वैसे कोई अपनी मर्जी से किसी की सिफारिशें नहीं करता फिरेगा कि कोई छुड़ा ले तुम्हें, जबकि अल्लाह ना चाहे। वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद किए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए। बहुत इंपॉर्टेंट आयात थी इसलिए इतना टाइम लगा इसके ऊपर। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون